Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
कई बार मन में होता तो है प्रश्न ना, जो निर्गुण निराकार अस्तित्व है जिसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं, कुछ नहीं, कोई स्पंदन नहीं, हलचल नहीं, ठीक है, परंतु जब उनमें तद ऐक्षत शब्द आप कहेंगे, उन्होंने ईक्षण किया, ईक्षण मीन पर्यालोचन, ठीक है, तो पर्यालोचन करने के पहले तो माया के साथ संबंध, तो ये कैसा संबंध है? ये देखिए क्या बोल रही, माया है नहीं तो पहले कैसे संबंध हो? इसलिए उस माया शक्ति रूप से ही संपूर्ण विस्तार है, इसका प्रतिपादन किया। अब उसको रखते प्रश्न भी वहीं देखेंगे, और वही परब्रह्म अद्वितीय जो सत्ता है जीव के उत्पत्ति, और विशेष करके यहां ये बता रहे हैं ऐश्वर्य लाभ, ये जो हम पुरुषार्थ के द्वारा समृद्धि ऐश्वर्य शक्ति सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, और ये प्राप्ति और नियंत्रित्व उस ईश्वर में है। कभी हम लोग क्या करते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा मिल गया है, मिलता है, मतलब तो पुरुषार्थ भी उस ईश्वराधीनत्व है, कुछ हिस्से में पुरुषार्थ केवल पुरुषार्थ के द्वारा संभव नहीं है। पुरुषार्थ और कृपा अलग चीज है, परंतु ये पुरुषार्थ भी उनके इच्छा के अधीन है, स्वतंत्र कोई इच्छा, ये एक मुख्य है। और द्वितीय बात कह रहे कि ऐश्वर्य लाभ, ये जो समृद्धि ऐश्वर्य मिल रहा है वो भी कितना मिलेगा, नियंत्रित्व उस परमात्मा के अधीन है। तृतीय, इसीलिए इतना तो ये हो जाता है कि जितना भी हम कुदाकुद करें भैया, कुछ तो नियंत्रक है जो, और इसको अगर हम दिल से समझ लेते हैं, मान दिल मान जाए तो उतना तो कम से कम। अब ये पुष्प है, नियंता शब्द का क्या अर्थ है, ये पुष्प है, ये कितना बड़ा होगा, कहां तक फैलेगा, कोई सत्ता है कि नहीं, जो एक किसको बोले कि ब्लूप्रिंट की तरह इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, कहां कितना बड़ा होगा, होने के बाद वो अपने आप कंट्रोल में आ रहा है, इससे बड़ा नहीं। पूरे ह्यूमन बीइंग बॉडी को देखिए, आंख कितना बड़ा होगा, एक समय है, एक टाइम है और एक परिधि है, ऐसा तो नहीं कि आंख बड़ा होते होते पूरा मुंह भर करके आंख हो, ऐसा तो हुआ नहीं। तो कौन है जो अंदर से बैठ करके प्रत्येक चीजों को अपने अधीन में करके नियंत्रण कर रहे हैं, तो वही नियंता हमारे को क्या मिलने वाला है, पुरुषार्थ कितना हम कर सकते हैं, ऐश्वर्य समृद्धि सुख भोग कितना मिलने वाला, वो भी नियंता, केवल एक पक्षपाती नियंता नहीं है, तो ये भी नियंता के अधीन है। ऐश्वर्य लाभ समुदाय के नियंत्रित्व, वही चैतन्य सत्ता है, तृतीय अध्याय में उसका वर्णन है। और उनके महाराज कहते हैं सहस्र शीर्खा पुरुखा इत्यादि मंत्र के द्वारा अनंत मस्तक, अनंत चक्षु, अनंत हाथ पांव, और वो इसमें और एक विशेष आपको उपनिषद मिला है, उसी का वर्णन करने वाले हैं कि हृदय में अवस्थित है और दशांगुलम, दशांगुल परिमित वाला है, और अणु से अणु है, और बृहत से बृहत्तर वो है, और इस ऐसा जो परमात्मा उनको जो जान लेता है, तृतीय अध्याय का फल बता रहे सर्व दुख का निवृत्ति, ठीक है, दुख निवृत्ति सब चाहते हैं, परंतु दुख निवृत्ति के उपाय क्या है? कहते जब तक नियंता जगदीश्वर को, जो सबके नियंत्रण करने वाला है, उनको जब तक आप नहीं जानेंगे। देखिए समृद्धि सुख भोग तो हम चाहते हैं, परंतु वो अगर हमको पता लग जाए कि भाई वो भी कोई नियंत्रक नियंता है और हमारे मैं उनके अधीन हूं, तो एक मन में ही थोड़ा सा शांति कि हम कितने भी कोशिश करें, जो हमारा लिखा हुआ है, जो नियंता है उन्होंने बांध दिया है, इतना ही मिलेगा, तो देखो एक शांति। तो वो उसको जो जान लेता है सत्य रूप से अनुभव कर लेता है, तो उनके लिए तुम्हारा सर्व दुख हानः निवृत्ति। चौथा अध्याय में तृतीय अध्याय के अनुरूप ही परमेश्वर को सर्वश्वरत्व का उपाधि दे करके समझाया गया, और इस उपनिषद के जो खास मुख्य बिंदु है उसको शिव और रुद्र के आपको दो तत्व इस उपनिषद में मिलता है। रुद्र और शिव दो एक है कि अलग है? ऐसे ही समझते एक ही है, परंतु इस उपनिषद में दोनों को अलग अलग करके बतलाने वाले हैं। क्या है रुद्र शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, रुलाने वाला। अरे इसे आप लोग थोड़ा अपर क्लास के स्टूडेंट बन गए। रुद्र, हाँ बस ये भी एक इसी अर्थ को यहां ले रहे हैं। रुद्र मतलब जो उग्र धारण करके, रूप मूर्ति उग्र मूर्ति जिन्होंने धारण करके रखा रुद्र, ये भी उपनिषद में आया। आप जो बोल रहे हैं, आप भी जो बोल रहे वो भी उपनिषद में आया, पर तो यहां जो दे रहे विशेष दृष्टि रुद्र शब्द का अर्थ यहां कहते हैं भय उद्रेक, भयानक जो स्थिति है, क्योंकि इस संपूर्ण प्रपंच का विस्तार और प्रपंच का प्रशमन लय वो रुद्र मूर्ति धारण करके ही करते हैं। तो रुद्र मीन्स उग्र, उग्र। तो इस उग्र मूर्ति, भयानक जो उग्र मूर्ति, और जो कि भय का उद्रेक, भय का उद्रेक करता है, उस उग्र रुद्र रूप से विराजमान जो तत्व है वही एक रूप से रुद्र है, और वही अन्य रूप से शिव है। अर्थात एक ही परमेश्वर सर्वशक्ति जो चिद घन आनंद घन ये जो सत्ता है वो रुद्र भी है अर्थात उग्र भी है और शिव भी है। शिव मतलब परम कल्याणम। इसलिए एक पक्ष नहीं है, केवल भय दिखाता ऐसा नहीं है, उस भय में भी परम मंगलमय कल्याणमय की भावना है। इसीलिए शक्ति उसका भी वर्णन यहां पर किया गया शिव रूप से। इसीलिए दो चतुर्थ अध्याय में उस परमेश्वर के दो रूप का वर्णन करने हैं, एक तो है रुद्र जो कि भय का स्वरूप है, और द्वितीय है परम मंगलमय विधानकारी शिव। तो शिव और रुद्र के साथ आपको परिचय कराएंगे, और वही जो चैतन्य परमेश्वर है सभी भूतों में विराजमान है, परंतु प्रच्छन्नमिव शब्द आया। प्रच्छन्नमिव मतलब प्रच्छन्न, बौद्ध आप सुने होंगे, प्रच्छन्नमिव प्रच्छन्न जैसा सब में विद्यमान है। इसमें है कि नहीं, इसमें है कि नहीं? चैतन्य अगर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो आप बताइए इसमें है कहां है, दिखाइए जो। हाँ हाँ, अस्ति भाति प्रिय रूप में है ना, बोलने के लिए है कि सचमुच अनुभव भी है ना। वही बात को स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं कि प्रच्छन्नतया, सर्वत्र है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब स्वच्छता के कारण पड़ता परंतु लकड़ी में नहीं, ठीक उसी प्रकार चैतन्य सर्वत्र है परंतु स्वच्छ अस्वच्छ ये कारण, इसके कारण वह जैसे प्रकट और अप्रकट रूप में विद्यमान है। तो वही जो चैतन्य है प्रच्छन्न रूप से सर्वत्र विद्यमान है परंतु सब में होते हुए भी वो सब में नहीं है, ये भी मुख्य है। क्योंकि वेदांत के अल्टीमेट निश्चय क्या है, एकम एव, तो द्वैत प्रपंच तो है ही नहीं, और जो द्वैत प्रपंच प्रतीति हो रही है उसमें है, परंतु जब अद्वैत की ओर से हम अनुभव करते हैं तो दो अलग हो जाते। इसलिए दो भाषा को ध्यान में रखिएगा, जब सिद्धों की भाषा हम कहते हैं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये आप बोलिए खूब, परंतु ध्यान रखना है कि ये सिद्धों की अनुभव जिन्होंने किया उनकी भाषा है, उनको समझना होगा तो हमें वहां तक पहुंचना होगा। नहीं तो द्वैत में रह करके अद्वैत का भाव बोल सकते हैं परंतु वह हार्दिक संभव नहीं है। और इतना और ध्यान रखना है कि जो सिद्ध की भाषा है वो हम सुनेंगे, वो हमारा लक्ष्य होगा, परंतु जो साधक है उनकी भाषा को हम समझे और हमारी स्थिति को जान करके साधक बन करके सिद्ध को अनुभव करे। इसलिए जब वेदांत का निश्चय से कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदिदमिपासते इत्यादि अनेक मंत्र है कि एकमेवा द्वितीयम, ये सब जिन्होंने अनुभव किया साक्षात्कार कर लिए ऐसे महापुरुषों के अनुभव है, परंतु मैं जहां हूं वो अनुभव हमारा लक्ष्य कोटि में है, परंतु मैं हूं द्वैत जगत में, तो हमारे लिए तो महाराज ये कर्म भक्ति उपासना श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा उस स्थिति में पहुंचना होगा। इसलिए चतुर्थ अध्याय में सब प्रच्छन्न रूप से वो विद्यमान है इसका प्रतिपादन किया, और उस प्रच्छन्नता को आप अनुभव इंद्रिय के द्वारा कर नहीं सकते। मुख्य है, कई बार मन में है कि सर्वत्र ईश्वर है, कहीं प्रकट है कहीं अप्रकट है, प्रच्छन्न रूप से है, परंतु वो इंद्रिय गोचर नहीं है, इतना निश्चय कर लेना चाहिए। तो ये जो निश्चय, तो वो कैसे जानेंगे फिर जब इंद्रिय गोचर नहीं है, तो बिल्कुल इंद्रिय गोचर नहीं है। जत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, इस रूप से मतलब यही है ना कि देखिए इंद्रिय गोचर नहीं है बाह्य, परंतु मनसापि गम्यत्वात्, ऐसा एक श्रुति वचन मन के द्वारा, वो इसे चौथे अध्याय में एकदम जैसे अगर सीधा सीधा बता दी कि मन के द्वारा भी जाना नहीं जा सकता, इंद्रिय तो है ही नहीं, तो फिर हमारे पास और कौन से इंस्ट्रूमेंट बचा है कि आप जान पाओगे। बिल्कुल एक हताशा जैसा, तो बोले महाराज बिल्कुल परिश्रम जो है ऐसा नहीं है। उस चौथे अध्याय में बता रहे मन के द्वारा जाना जा सकता है, क्यों, जन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम जदिदम उपासते। उस मन के जो संचालन, मन के जो मनस्थिति, मन रूप से जो वस्तु का आगमन, वो किनके लिए, किनके द्वारा हुआ, वो मन के परिशुद्ध करने का उपाय, और मन के द्वारा ही हृदय में वो उपलब्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं, उस चौथे अध्याय में बताया। और जिन्होंने इस अनुभव को प्राप्त कर लेगा, वो जो बद्ध जीव, जिस जो अपने को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी जन्मने वाला मरने वाला ऐसा बंधन वाला समझ रहा था, तो अनुभव जब होगा फल बता रहे सर्व बंधन मुक्ति ही, सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। अभी बंधन है कि नहीं ये पहले पता लगना चाहिए। अगर मुक्त है तो महाराज बिल्कुल आप कोशिश मत करो, बंधन है कि नहीं। अभी घर से इधर आए, मैं भी तीन माला से दो माला आ गया, बंधन कहाँ है? बिल्कुल मुक्त जैसे घूम रहे। कहते महाराज भूख प्यास जरा जन्म दुख मृत्यु यही सब तो परम बंधन है। जिस टाइम पर खाते हैं आधी घंटे एक घंटा लेट हो जाए तो उसके लिए कष्ट होता है, ये भी एक बंधन है। बंधन मतलब केवल बाहरी से रस्सी से बांध दिया जाए यही बंधन ही है। वो बंधन शायद हल्का है, ये बंधन और तगड़ा है महाराज। इसीलिए कह रहे वो बंधन को अनुभव करके जो निर्बंध जो सत्ता है उसको जो जान लेता है तो सर्व बंधना विमुक्ति ही। और पंचम अध्याय में ईश्वर और जीव के स्वरूप को प्रतिपादन करते हुए दोनों के संपर्क के बारे में एक अद्भुत बताया। ममा जोनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, भगवत गीता जी में मिला। जोनि ही शब्द मिला ना, कारणम, योनि मीन्स कारणम। उसी को यहां ईश्वर जिनको शक्ति के रूप में जिसको कहा गया वो जोनि के रूप में यहां पर बतलाया गया। क्योंकि सर्व समुद्भव कारणम, सब कुछ सृष्टि के मूल में वही है, माया के संस्पर्श आने से ही न सृष्टि है, तो इसीलिए उसको जोनि शब्द से कहा गया। और दोनों के जो संबंध है और उस जोनि के जो भी गुण है क्रिया है उसको, क्रियाओं को इस शक्ति अथवा कर्म के रूप में जगत के रूप में जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये हो गया उनके गुण। तो जोनि और गुण और ईश्वर और जीव के जो संबंध है इसके बारे में इस पंचम अध्याय में बताया गया। और संबंध मीन्स है क्या? संसार। संबंध ही संसार है ना, और संबंध विवर्जित होना संसार का नाश, मुक्त। तो यही बता रहे एकमात्र परमेश्वर को संबंध रहित जो अनुभव कर लेता है उनके जीवन में मोक्ष, इसी को आप लोगों की भाषा में संस्कृत विविक्त करणम विवेकम अथवा विवेक ग्रह और विवेकाग्रह दोनों शब्द है। विवेक का ग्रह हो जाए, चावल और दाल मिला हुआ है दोनों को अलग अलग आप कर दे तो ये हो गया विवेक, विविक्त करणम। और चावल दाल मिला करके है तो विवेकाग्रह, अग्रह जहां पर विवेक का ग्रहण नहीं हुआ। तो कहते संपूर्ण सृष्टि का दर्शन अनुभव अनुभूति जो आप कर रहे हैं इसके मूल में है विवेकाग्रह। विवेक का ग्रह नहीं है, विवेक हो नहीं पाया महाराज। भाई सत और चित, नित्य और अनित्य, सत्य और मिथ्या, ये विवेक हुआ क्या? जीवन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो विवेक हम कर लेते हैं, मतलब पारमार्थिक लेवल पर स्तर पर तो हम क्या सत्य है क्या मिथ्या है ये विवेक हम कर नहीं पाते हैं। इसी को साधन चतुष्टय में क्या बोला, नित्या नित्य वस्तु विवेक। यही तो बात है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है ये दो अगर तत्व अलग अलग विवेक हो जाए तो फिर कहते हैं ये जो संसार है ये जो बंधन है इससे वो मुक्त हो जाता। और महाराज अंतिम षष्ठ अध्याय में आकर के पूर्व प्रथम अध्याय में जो जिज्ञासा किया गया कि सृष्टि के कारण कौन है, वो जो ईश्वर है उस ईश्वर के साथ ही संपूर्ण जगत का एक अभिन्न संबंध है। और वो संबंध माया के द्वारा मकड़ी के जाल की तरह विस्तार है और चाहे तो वो ईश्वर उस जाल को समेट करके अपने अंदर प्रलय काल में रख लेते हैं। तो ये जो उनके विभाव और उद्भव और विभव, ये दो तत्व को जो समझ लेते हैं, वो भी सारे कर्मों से, सारे उपाधियों से, सारे धर्म से वो मुक्त हो जाते हैं। अंतिम में आकर के ऐसा कहा और अंतिम में ये बतला रहे हैं कि परमेश्वर ये ज्ञान कौन देगा, कहते गुरु। इसीलिए वो श्लोक आप लोगों को पता होगा, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गौरव तस्यैते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। ये जो भक्ति गुरु के जो स्थान है, अद्वितीय स्थान है जीवन में, और गुरु और ईश्वर में जो एक ऐक्य अनुभव के साथ आपको चलना है, और वेदांत में भी भक्ति की जो अपूर्वता है, ये अंतिम अध्याय में आकर के बतलाने वाले हैं। और भक्ति के एक सुंदर प्रतिपादन पूरे उपनिषद में आपको मिलने वाला है। इसीलिए भगवत भक्तजन इतना सुंदर एक उपनिषद का स्वाध्याय आप लोगों ने प्रारंभ किया, जहां वेदांतियों का ब्रह्मवाद, पौराणिकों का देववाद और योगियों का योगवाद, ये त्रिवेणी का संगम रूप जो शतश्रुति उपनिषद, इस उपनिषद के स्वाध्याय हम लोग करेंगे। अभी एक महीना हमारे साथ आपको चलना है, और इस उपनिषद में स्तुति भी आपको मिलेगा। सविता, रुद्र, परमेश्वर के दो रूप का स्तुति जो है आपको मिलेंगे, और साथ साथ इस उपनिषद के एक अपूर्वता को प्राप्त करेंगे। कल से तो संबंध भाष्य अभी भी आपके तीन चार दिन चलने वाला है, मैं तो उतना समय उसमें नहीं लूंगा, थोड़ा उसमें दौड़ करके, मेरा ये है कि मूल में हम प्रवेश कर जाए, उसकी ललक मुझे ज्यादा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक जो है ना, बहुत ही सुंदर है। तो कोशिश करूंगा जैसी भगवान की प्रेरणा होगी कि संबंध भाष्य को थोड़ा करके हम फिर मूल में प्रवेश करेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरा सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वतीपते हर हर महादेव।